कल रात ईशानी की नींद खराब करने की वजह से आलिया के सर में दर्द हो रहा था। वो अब तक रुद्राक्ष और बाकी फैमिली का लिहाज कर रही थी, लेकिन अब ईशानी की हरकतें उसके सिर के ऊपर जा रही थी। आलिया ने बदला लेने के लिए ईशानी को ब्रेकफास्ट टेबल पर बुलाया और फिर उबलते हुए नूडल्स के बोल में उसका हाथ डाल दिया। हाथ जलने की वजह से ईशानी दर्द से जोर से चिल्लाई। तभी किसी ने उसे पीछे पकड़कर खींच लिया। ईशानी जोर जोर से रो रही थी, वहीं आलिया जैसे अपनी जगह पर जम गई हो। उसके सामने रुद्राक्ष खड़ा था और रुद्राक्ष ने उसके गाल पर कस के तमाचा लगाया। थप्पड़ लगने की वजह से आलिया के हाथ से बोल नीचे गिर गया था और पानी के कुछ छींटे उसके पैरों पर भी गिर गए थे। वो भी दर्द से चिल्लाई। फिलहाल आलिया को अपने दर्द से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि रुद्राक्ष गुस्से में था। उसने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, भाई वो मैं। आलिया के शब्द मानो उसके गले में ही अटक गए हों, क्योंकि रुद्राक्ष उसे सर्द निगाहों से घूर रहा था। रुद्राक्ष को कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसने ईशानी का हाथ पकड़ा और उसे लिफ्ट से अपने फ्लोर में ले जाने लगा। रुद्राक्ष के जाते ही विक्रांत गुस्से में आलिया पर चिल्लाकर बोले, तुम ना मुंबई में ही ठीक थी, क्या जरूरत थी यहां पर आकर रहने की और ये सब उल्टी सीधी हरकतें करने की? मुझे तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी आलिया। ये क्या सास बहू ननद का ड्रामा लगा रखा है? अगर रुद्राक्ष को गुस्सा आ गया तो उसका असर पूरे बिजनेस पर पड़ेगा, लेकिन नहीं, तुम लोगों को इस बात की पड़ी है कि वो लड़की यहां पर क्यों रहती है। मैं पहले कह रहा हूं, अगर यहां किसी भी फैमिली मेंबर की वजह से मेरे बिजनेस पर छोटी सी भी आंच आई या रुद्राक्ष ने कुछ किया तो मैं किसी को भी नहीं बख्शने वाला हूं। विक्रांत को इसके बिजनेस से ज्यादा प्यारा और कुछ नहीं था। सबको धमकी देने के बाद बिना नाश्ता किए ही विक्रांत वहां से चले गए। उसके जाते ही आलिया ने रोते हुए माया और दिव्या की तरफ देखा। उनमें से कोई कुछ कहता उससे पहले नवयम बीच में बोल पड़ा, डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब भाई और उसने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं तो आप लोगों को ये सब उल्टी सीधी हरकतें करने की क्या जरूरत है, बेचारी को खामखा चला दिया। इतना कहकर नवयम ही अपनी खाने की प्लेट उठाई और अपने रूम में चला गया। आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? भाई ने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी उसे लड़की की वजह से, आलिया सुबकते हुए बोली। दिव्या ने सख्त आवाज में जवाब में कहा, बिल्कुल ठीक किया रुद्राक्ष ने, तुम्हें एक थप्पड़ नहीं दो चार चांटे पड़ने चाहिए थे, तभी तुम्हें अक्ल आती। अरे तुम्हारे अंदर इंसानियत है भी या नहीं? तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो कि एक लड़की का हाथ पकड़कर जला दिया? मैंने अब तक ऐसे सीन सिर्फ पुराने जमाने की फिल्मों में देखे थे, लेकिन तुमने तो उन पर भी पानी फेर दिया। एक्टिंग सीखने के चक्कर में कहीं तुम ऐसी मूवीज तो नहीं देख रही? आप भी उसी का फेवर कर रही हैं और मुझे एक्टिंग सीखने की जरूरत नहीं है, आलिया गुस्से में दिव्या पर चिल्लाकर बोली। दिव्या ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उठकर अपने कमरे में चली गई। अब वहां माया और आलिया की बची हुई थी। आलिया ने माया की तरफ देखकर सर हिलाकर कहा, डोंट टेल मी कि आप भी पूरी फैमिली की तरह ईशानी का फेवर करने वाली हैं। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं कि दुश्मन की चीजें भी सही लगने लगती हैं। किसी को भी फिजिकल परेशान करने से अच्छा है उसके साथ मेंटल टॉर्चर करना। एक बार हमें बता तो देती तुम ये करने जा रही हो, कम से कम हम पूरी फैमिली के सामने तुम्हें गलत होने से तो रोक सकते थे, खासकर रुद्राक्ष के सामने, माया ने जवाब में कहा। उन्हें भी आलिया की ये हरकत पसंद नहीं आई थी। आलिया ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुंह बनाते हुए वहां से जाने लगी। वो कुछ कदम आगे बढ़ी ही होगी कि उसके पीछे से माया ने तेज आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ आए हुए एक महीने से ज्यादा टाइम हो गया है, शूट पर नहीं जाना क्या तुम्हें? अपना सामान पैक करो और अपने मुंबई वाले घर में वापस पहुंचो, चोपर हम रेडी करवा देंगे। माया ने इनडायरेक्टली आलिया को वहां से जाने का कह दिया था। उसे इस बात का बहुत बुरा लगा। आलिया जवाब देने के लिए पीछे पलटी, लेकिन तब तक माया अपने कमरे की तरफ बढ़ चुकी थी। आलिया पैर पटकते हुए बोली, हो क्या गया इन सबको? इन सबकी आंखों के सामने ईशानी शर्मा के नाम की पट्टी कैसे बन सकती है? उस लड़की ने मेरे साथ क्या किया, उसकी बहन ने क्या किया, ये सब भूलकर वो उसका फेवर कर रहे हैं। मेरा बस चलता तो मैं उसे पूरी तरह चला देती, ताकि उसकी शक्ल तक नहीं पहचान में आती और फिर वो मेरे भाई के करीब नहीं आ पाती। वहीं उनसे अलग रुद्राक्ष ईशानी को लेकर ऊपर पहुंचा। वो ईशानी के घाव को साफ करके उस पर दवा लगा रहा था। ईशानी रोए जा रही थी। वो रोते हुए बोली, बहुत चल रहा है रुद्र, प्लीज रहने दीजिए, आप टच की मत कीजिए मेरे हाथ को, तुम शांत होकर बैठो, बस एक बार चलेगा फिर ठीक हो जाएगा, रुद्राक्ष ने ईशानी के गाल को सहलाते हुए कहा। रुद्राक्ष काफी शांत था, लेकिन उसके अंदर का तूफान उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। जितना दर्द ईशानी को महसूस हो रहा था उसे कहीं ज्यादा रुद्राक्ष फील कर रहा था उसे इस हाल में देखकर। ईशानी के घाव पर फर्स्ट एड करने के बाद रुद्राक्ष बोला, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं मैं ठीक हूँ और ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा, ज्यादा नहीं लगा है, आप सही टाइम पर आ गए थे, ईशानी ने जवाब दिया। इस वक्त उसे इतना दर्द हो रहा था कि ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। रुद्राक्ष को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था, उसे गिल्ट महसूस हो रहा था। उसने ईशानी के आंसू साफ किए और उसे अपने सीने से लगाकर कहा, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ, तुम मुझे कहती रही कि तुम्हें मेरे पास रहना है और मेरे अंदर इतनी हिम्मत तक नहीं हुई कि मैं तुम्हें यहाँ अपने पास रख सकूँ। आई प्रॉमिस अब मैं तुम्हें अपनी नजरों से भी दूर नहीं करूंगा। मैं ठीक हूँ रुद्र, आप बेनजर टेंशन ले रहे हैं, ईशानी ने धीरे से कहा।
रुद्राक्ष उससे अलग हुआ और उसके फोरहेड पर किस किया। डॉक्टर के पास चलते हैं, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, रुद्राक्ष ने जवाब दिया। उसने ईशानी का चेहरा साफ किया। कुछ ही देर में रुद्राक्ष ईशानी का हाथ पकड़कर नीचे आ गया था। तब तक वहाँ हाउस हेल्पिंग स्टाफ के अलावा और कोई नहीं था। रुद्राक्ष ईशानी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा और उसका ट्रीटमेंट करवाने के बाद दोनों वापस गाड़ी में थे। गाड़ी में आते ही ईशानी ने रुद्राक्ष से कहा, मैंने कहा था आपसे, ये बिल्कुल ठीक है, आप सही वक्त पर आ गए थे, इस वजह से ज्यादा नहीं चला है, बस तब थोड़ी जलन हो रही थी तो मैं रोने लगी, डॉक्टर ने भी यही कहा था, फिर आप बेवजह क्यों परेशान हो रहे हैं। ईशानी ने रुद्राक्ष के परेशान चेहरे की तरफ देखकर कहा, बस ऐसे ही, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है इसकी वजह मैं हूँ, सच कहूँ तो मेरा अब उन लोगों के बीच जाने का भी मन नहीं कर रहा है, रुद्राक्ष ने बुझी आवाज में कहा। ठीक है ना, फिर कहीं घूमने चलते हैं, मैं लंदन यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैंने अभी कोई जगह नहीं देखी है, तो क्या आप मुझे कहीं पर लेकर चलोगे, ईशानी ने थोड़ा एक्साइटेड होकर कहा। रुद्राक्ष ने कुछ पल सोचा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। रुद्राक्ष ईशानी को द ब्रिटिश म्यूजियम लेकर गया। म्यूजियम काफी बड़ा और खूबसूरत था और ईशानी को बहुत पसंद भी आया था। उन्हें पूरा म्यूजियम घूमने में 3 घंटे का टाइम लग गया था और उसके बाद ईशानी को भूख लगने लगी थी। रुद्राक्ष ईशानी के कहने पर उसे एक लोकल रेस्टोरेंट में लेकर गया। इतने दर्द में भी ईशानी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर रुद्राक्ष का गिल्ट अब कुछ कम हो रहा था। वहां बैठते ही ऑर्डर करने के बाद रुद्राक्ष ने ईशानी का हाथ अपने हाथ में दिया और उसे पर हल्के से किस करके कहा, तुम्हें मुंबई वापस जाना है क्या?
आप मेरे साथ चलो तो चल सकती हूँ, बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि डिवोर्स के बाद मुझे मुंबई छोड़ दोगे तो ये मैं नहीं होने दूंगी, ईशानी ने सीधे सीधे जवाब दिया। मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की थी, उसके बावजूद तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। पहले कुछ दिनों में तो मेरा बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था, अब जब याद करता हूँ तो खुद को ही गिल्ट फील होता है, रुद्राक्ष ने नजरें झुकाकर कहा। ईशानी ने कुछ पल उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा, फिर वो थोड़ी देर रुककर बोली, अच्छा आप अगर मुझे छोड़ दोगे तब आपको गिल्ट फील नहीं होगा? मेरे साथ रहने में तुम्हारा नुकसान ही है, मुझे संजना मित्तल से शादी करनी होगी ईशानी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मेरी मजबूरी है, रुद्राक्ष ने शांत लहजे में जवाब दिया। ईशानी हैरान थी, रुद्राक्ष जो खुराना फैमिली की नींव था उसकी आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके चलते संजना मित्तल से शादी करनी पड़ रही थी। वो कुछ पूछ पाती उससे पहले रुद्राक्ष बोल पड़ा, आगे कुछ मत पूछना, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, अभी तुम छोटी हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, डिवोर्स के बाद काफी सारा पैसा मिलेगा, अपना करियर बनाना, बिजनेस शुरू करना या कुछ भी करना, पर गलती से भी मुझसे मत टकराना। एक और रिक्वेस्ट है, आलिया के अगेंस्ट कुछ मत करना। आपकी सारी बातें एक बार के लिए फिर भी मान सकती हूँ, लेकिन इस बात को भूल जाइए कि मैं आपकी बहन के अगेंस्ट कुछ नहीं करूँगी, ईशानी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। रुद्राक्ष के इतना समझाने पर भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। ईशानी किसी की नहीं सुनने वाली थी, उसने सोच लिया था कि वो आलिया को सजा दिलाकर रहेगी, तो इस मामले में वाकई वो काफी सीरियस थी। रुद्राक्ष और ईशानी वहां बात करते हुए खाना खा रहे थे तो वहीं उनसे कुछ दूर टेबल पर एक औरत बैठी हुई थी जो उम्र में लगभग 35 साल के आसपास थी। वो ईशानी को काफी गौर से देख रही थी। ईशानी की तरफ देखते हुए वो अपने मन में बोली, तो ये खबर बिल्कुल सही थी कि सनशाइन लंदन में है, वेरी गुड बेबी, इतने कांड करने के बाद इस तरह खुलेआम नहीं घूमना चाहिए। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने किसी को मैसेज किया और फिर वहां पर बैठकर ईशानी की मूवमेंट को गौर से देखने लगी। वहीं रुद्राक्ष और ईशानी की टेबल पर इस वक्त थोड़ी चुप्पी छाई हुई थी। दोनों खाना खा रहे थे। खाने के बीच में रुद्राक्ष ने कहा, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो ऑर्डर कर लेना। ईशानी ने रुद्राक्ष की बात पर हामी भरी। लंच के बीच में रुद्राक्ष वॉशरूम के ले गया। जाते वक्त उसने ईशानी की तरफ मुड़कर देखा तो वो खाने के बजाय उसी की तरफ देख रही थी। कितनी जिद्दी हो ना तुम, पर मेरे पास अभी टाइम है और मैं तुम्हें इस बात के लिए मना कर रहूंगा कि तुम्हें आलिया के अगेंस्ट कुछ नहीं करना है, रुद्राक्ष खुद से बड़बड़ाकर बोला। लगभग 10 मिनट बाद वो वापस लौटा तो ईशानी वहां पर नहीं थी। एक और बात वहां चौंकाने वाली थी कि पहले उस जगह पर थोड़ी बहुत भीड़ थी, वहां अब बिल्कुल शांति छाई हुई थी। सब लोग जैसे अचानक कहीं गायब हो गए हों और उनमें से ईशानी भी एक थी।